क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।
ओम शांति। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में, क्रांति का ये पर्व नयनों में उतरा है। कैसे? किरण बनकर, प्रकाश बनकर। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज, ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ, ओम शांति भवन में शिव संदेश सुनाए, अंधकार में भटके मानव को शांति पथ दर्शाए, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ जानकर आत्मज्योति जगाओ तुम, राजयोग अनुपम विधि से पुनः देव पद पाओ तुम, प्रभु मिलन की जन जन की सबकी प्यास बुझाए, ओम शांति। न हिंदू न मुस्लिम तुम, एक पिता की संतान हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्मा रूप में है भाई भाई, अविनाशी नाता जुटाकर प्रेम की धार बहाए। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। तो यज्ञ इतिहास के इस कारवा में आज और आगे बढ़ते हैं। 69 से 80 तक 8 बातें हमने देखी और अभी अंतिम भट्टी के 14 दिन, उसको दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले 7 दिन 81 से लेकर 2007 तक, और फिर लास्ट 7 डेज 2007-2008 से लेकर तो 2022 तक। उस पीरियड को कहा जाता है द शिफ्ट। और ये जो पीरियड चल रहा है 69 से 2007 का, इसको कहा गया है द एक्सपांशन फेस। तो यज्ञ इतिहास को हमने 5 भागों में विभाजित किया था। फाउंडेशन ईयर 36 से लेकर तो 50 तक, 51 से 59 तक, ट्रांजिशन 50 से लेकर 60 से लेकर 69 तक, कंसोलिडेशन और 69 से लेकर तो 70 से लेकर तो 81 तक, या 2007 एक्सपांशन और उसके बाद द शिफ्ट। तो आज एक्सपांशन फेज का दूसरा भाग, 81 से लेकर तो 2007 तक। तो अगले 7 दिन हम इस पीरियड में हुई हुई सारी घटनाओं की चर्चा करेंगे। एक बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1983 की, कौन सी 1983 की एक बात देख चुके हैं, उससे भी पहले या उसके बाद उसी साल दीदी मनमोहिनी अव्यक्त हुए, कभी कौन सी जुलाई 29 या 28, 28 जुलाई सुबह 9:30 दीदी अव्यक्त हुए, उसकी पूरी घटना वो पूरा वृत्तांत हम पहले देख चुके हैं विस्तार से, उसको फिर रिपीट नहीं करेंगे। पर पहले कुछ ऐतिहासिक बातें जो हुई 1983, फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारीज को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो यूएन का है, जिसको ECOSOC कहा जाता है, उसमें रजिस्टर किया गया, यूएन में रजिस्ट्रेशन 83 में। दो घटनाएं हैं, पहली ये और दूसरा दीदी का अव्यक्त होना। उसके बाद में 1980 से 82 के बीच ब्रह्मा कुमारीज के जो लीडर्स हैं या हमारे जो वरिष्ठ भाई बहने हैं, यहाँ पर वर्ल्ड टूर चालू हुआ 80 से लेकर तो 82 के बीच में वर्ल्ड टूर्स। इस समय की मुरलियों का अगर अध्ययन करो तो उसको आप उसमें आप देखेंगे निर्वेर भाई साहब विदेश यात्रा के लिए बाबा से छुट्टी ले रहे हैं, ऐसे अलग अलग भाई बहनों की यात्राओं के वर्णन आएंगे। तो वर्ल्ड टूर्स चालू हुआ। उसके बाद में सबसे पहला जो स्पेशल 10-पॉइंट प्रोग्राम चालू हुआ वर्ल्ड फेयर के 80 से 82 तक, वो था स्पेशल 10-पॉइंट प्रोग्राम फॉर वर्ल्ड वेलफेयर। ये एक 10-पॉइंट का एक प्रोग्राम चालू हुआ था 80 और 82 के बीच वर्ल्ड वेलफेयर का। ये विदेश की सेवा का समाचार है थोड़ा। उसके बाद में 83 में फर्स्ट मेजर नॉन इंडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस 83 में, कहाँ पर हुई थी, नैरोबी में। उसका थीम था द ओरिजिन ऑफ पीस। द फर्स्ट बड़ी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हुई थी 83 में, इंडिया से बाहर, ओरिजिन ऑफ पीस। और 83 में ये भी हमने देखा ओम शांति भवन बना और उसमें सबसे पहली विश्व शांति सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद में हर साल होती गई। यहाँ पर आया कौन था, डॉक्टर रॉबर्ट मुलर। और उसके बाद की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकंड, उसमें शेली, एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस चालू हो गई। तो ये पहली कॉन्फ्रेंस थी 83 में। उसके बाद में हर साल कॉन्फ्रेंस चालू हो गई। उसके बाद में 84 में दादी प्रकाशमणि को यूएन पीस मेडल अवार्ड दिया गया। उसके बाद में छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस होने लगी। लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका थीम था स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। कोलोन में एक कॉन्फ्रेंस हुई वेस्ट जर्मनी इंटरनेशनल साइंस पर। उसके बाद में पीस पर कॉन्फ्रेंस होनी चालू हुई, डुबलिन, पेरिस, सिडनी, न्यूयॉर्क, मलेशिया, ब्राज़ील, कोलंबिया। ये सारी अव्यक्त मुरलियों का अगर अध्ययन किया जाए 80 से लेकर तो 90 तक, पिछले एक साल से हर संडे हम अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक कौन सी चालू थी, अभी 91 की चल रही है। अभी तक की ये जो मुरली है उसमें आपने देखा होगा कभी लंदन ग्रुप से मुलाकात, कभी ब्राज़ील ग्रुप से मुलाकात, अलग ग्रुप, नैरोबी ग्रुप से, केनिया ग्रुप से, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से, न्यूयॉर्क ग्रुप से। तो ये सब आना चालू हो गए यहाँ पर मधुबन में, क्योंकि 71 में लंदन से सेवा चालू हुई, 74 में दादी एंट्री, तब और सेवाएं बढ़ी, 75 ऑस्ट्रेलिया, 77 अमेरिका। और उसके बाद में बहुत सारे रिट्रीट सेंटर खुलते गए अफ्रीका में। तो ये एक कॉन्फ्रेंस हुई। ये जो दशक था 90s का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ा हम आगे पीछे जाते जाएंगे। इस पीरियड में क्या हुआ, 90s में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मुरली सर्कुलेशन। अब तक जो मुरलियाँ थी वो पोस्ट वाली थी, पर यहाँ जो मुरलियाँ चालू हुई सर्कुलेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चालू हुई। एक ही मुरली, एक ही समय, एक ही डेट की सब जगह, समय तो नहीं परंतु एक ही मुरली एक ही दिन सब जगह पढ़ी जाने लगी 90s के दशक में। और फिर रिट्रीट सेंटर खुले इसी दशक में, यूके में, केनिया में, यूएसए में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। और एक मेजर चेंज जो यहाँ हुआ 90s में 2000 तक, कि ब्रह्मा कुमारीज की जो संस्था है यहाँ पे, अब इसने एक थोड़ा प्रोफेशनल रूप धारण किया। अब तक सेवा 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 चल रहा था, पर अभी थोड़ा प्रोफेशनल रूप धारण किया, मोर अकाउंटेबल, मोर प्रोफेशनल। और इसमें ऐसे इश्यूज रेस किए गए जो अब तक नहीं रेस किए गए थे। अब तक क्या था, तपस्या करो और थोड़ी बहुत सेवा करो। फिर धीरे धीरे फेयर चालू हो गए, मेले चालू हो गए, ये सब धीरे धीरे चालू हो गए। पर इसलिए पदयात्रा भी टाइम है, धीरे धीरे होगा। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में ऐसे इश्यूज लिए गए जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन, अब तक कभी नहीं लिए गए थे, ये इंटरनेशनल इश्यूज है, मेंटल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। अब तक सिंध का जो इतिहास था उसको स्मृति में रखते हुए अभी ज़्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पिरिचुअल लॉज है, एक गवर्नमेंट के लॉज है। अब तक हमें कोई परवाह नहीं थी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की लॉज की, पर अभी अबाइड बाय द गवर्नमेंट लॉज, सरकार के जो नियम है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है, एक एक रूल्स है, उसको अच्छे से स्टडी करना, उसको अच्छे से समझना और उस अनुसार चलना, ये एक मेजर चेंज था। ज़्यादा अकाउंटेबल हो गए, प्रोफेशनल हो गया अप्रोच, गवर्नमेंट के रूल्स की स्टडी। और ये जो इश्यूज है इस तरह के, चाइल्ड प्रोटेक्शन हो गया, इशू कंसिडरेशन हो गया, एक्सेस फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी, सेफ्टी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब के बारे में सोचा जाने लगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब तक ये सब टॉपिक्स नहीं थे, अब तक क्या था, तपस्या। अब तक क्या था, बाप को याद करो। अब तक क्या था, मैं आत्मा हूँ। अब तक क्या था, मेडिटेशन, शांति कैसे मिले, प्रेम कैसे मिले, पीस कॉन्फ्रेंस, डिवाइनाइजिंग ह्यूमंस, ये इस तरह के टॉपिक थे। पर अभी जो समाज वाले टॉपिक्स है, बहुत सारे इतिहासकार जो बीकेएस नहीं है और उन्होंने बीकेएस के बारे में जो लिखा है, उनकी जो किताबें हैं, वो कहते हैं कि ये क्या कर दिया बीकेएस ने, वर्ल्ड रिजेक्शन से वर्ल्ड एम्बिवेलेंस की तरफ कहाँ से आ गए। पहले तो वर्ल्ड रिजेक्शन था, विनाश विनाश विनाश, और अभी ये कैसी बातें चालू कर दी तुम लोगों ने, कि चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, ये सब कैसी बातें, री एजुकेशन, ये करो, पावर्टी हटाओ, ये सब बातें कहाँ से आ गई अब, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग। पर ये शिफ्ट हुआ है ग्रेजुअल, ये शिफ्ट हुआ है। ऑफिशियल नाम आज सुबह की अव्यक्त मुरली, विश्व परिवर्तन, स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन। तो वो 91 अभी तक, क्योंकि अपोजिशन जो चालू था मिड 80s तक चालू था ब्रह्मा कुमारी से। चालू कहाँ से हुआ था, 36 से चालू हो गया था अपोजिशन। पहले तो बहुत भयंकर था, भारत में आए तो थोड़ा शांत हुआ, पर गया नहीं, लोगों की बुद्धि में ओम मंडली घूम रहा था तब भी, नाम भी बदल गया, पर फिर भी 80s, मिड 80s के बाद वो थोड़ा कम हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन ऑफ मुरली, उसके बाद में वर्ल्डली लॉज कंसिडरेशन जो बताया, पर उसके साथ और एक गड़बड़ भी हुई। ये ऑनलाइन आने के बाद लोगों ने अपने ओपिनियन डालना चालू कर दिया इंटरनेट पर 90s में। उससे थोड़ा डिफेमेशन भी हुआ, क्योंकि कुछ एक लोग जिनके अनुभव इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने भी अपना डालना चालू किया, उन्होंने भी अपनी पुकार, अपनी मांग ऑनलाइन पे आ गए, मीडिया थोड़ा सा एक्टिव हो गया था यहाँ पर, तो वो भी एक पार्ट यहाँ पर चालू हो गया। और कल तो हमने देखा ही, स्प्लिंटर ग्रुप्स वहीं से बनना चालू हो गए थे 76 से, और एक के बाद एक फिर बनते गए, सनातन पार्टी, शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, महेश पार्टी, शिव शक्ति पार्टी, और एक के बाद एक पार्टी आने लगी ढेर सारी। उनकी अपनी एक ग्रुप्स है एक्स बी केस, मिलते हैं आपस में चर्चा करते हैं, वहाँ थे तो कितना दुखी थे और अब कितना सुखी है। परंतु एक बात तो पक्की है, भगवान को छोड़कर और ज्ञान को छोड़कर इस संसार में कोई कहीं पर भी चले जाए, अंदर से सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि अंतिम हट्टी यही है, द लास्ट डेस्टिनेशन, द लास्ट स्टेशन यही है। हाँ, परंतु परंतु बट डैश डैश डैश, यहाँ तक कि जो आदिदेव किताब है, जीवन को पलटाने वाली पलटने वाली अद्भुत जीवन कहानी, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाला व्यक्ति है, उसने भी वीके ज्ञान को छोड़ दिया और उसने अपनी नई संस्था चालू की विदेश में। अपना उसका वेबसाइट है, बड़ा एक्टिव है अभी भी। किस व्यक्ति ने, जिसने इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, वहां नाम लिखा है शांता त्रिवेदी, एडिटेड बाय, बट रियल ट्रांसलेशन जो किया है जिस व्यक्ति ने, वो अभी यज्ञ में है नहीं। यज्ञ में एक किताब है, बहुत पावरफुल बुक, इनर ब्यूटी नाम की इंग्लिश बुक। एक एक लाइन इतनी पावरफुल है उसकी, उस किताब की। दिव्य गुणों पर, 36 दिव्य गुणों का वर्णन है, एक्यूरेसी, बेनेवोलेंस, प्यूरिटी। जिस व्यक्ति ने वो किताब लिखी, वो बहन आज ज्ञान में नहीं है। तो जिन्होंने यहाँ स्टेज पर परफॉर्मेंस किया, वो आज ज्ञान में नहीं है। जिनकी पालना दादियों की गोद में हुई, वो छोटे छोटे बच्चे, आज वो ज्ञान में नहीं है। जिन्होंने संली पर बैठ बैठ के छोटे छोटे बच्चे मुरली सुनाते थे सेंटरों पर, वो आज नहीं है। ड्रामा बहुत अद्भुत है। जिसने हमको लाया था, जिस कुमार ने, वो आज कहीं और है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंट्रोड्यूस्ड हुआ यहाँ पर। अभी तक लोग आइसोलेटेड थे, एक का दूसरे को पता नहीं चलता था, न्यूज़पेपर सब नहीं पढ़ते। पर ये यहाँ से जब इंटरनेट ये सब इंट्रोड्यूस्ड होने लगा, तब ऑनलाइन डिफॉर्मेशन, हिंदा अग्लानी, ये सब 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 थोड़ा फैला। और जो मेजर इस पीरियड में चीज़ हुई, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, वो है 1983। 1983 में क्या हुआ? ओम शांति भवन बना। और इसी ओम शांति भवन में क्या हुई? फर्स्ट यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सबसे बड़ा वीआईपी डॉक्टर रॉबर्ट मुलर, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी था यूएन का, उसको बुलाया गया, जिससे खास अव्यक्त बाप दादा ने मुलाकात की थी ओम शांति भवन में। और दादी का ये स्वप्न था कि ऐसा एक हॉल बने जिसमें कोई पिलर ना हो, उस समय 83 में ये बड़ी बात थी। और ऐसा ये हॉल है जिसमें बीच में कोई भी पिलर नहीं है, ऐसे कैसा है ओम शांति भवन देखा होगा ना, ऐसा जाता है और बीच में ऐसा, और विदाउट पिलर, और इतना बड़ा, अद्भुत है, डायमंड हॉल, बहुत बात बना। परंतु ये 83 की बात है। तो यहाँ सबसे पहले क्या था? पहाड़ थे, चट्टान थी, कोठी थी, जो हमने देखा, किसी बहन को बाबा ने कहा था कि यहाँ जाकर उनको समझाओ, वो रोज यहाँ आती थी, जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं वहाँ पर वो ऑफिसर्स को समझाती थी। और फिर वो सामने भी जाने लगे मुरली सुनने, जब उनका कोर्स और ज्ञान उन्होंने समझ लिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पत्थर ही पत्थर थे, रात दादी रात को यहाँ आती थी और खुद ही पत्थर, जो छोटे 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 पत्थर है, उनको उठाती थी। ह्यूमन चेन बनती थी, एक व्यक्ति दूसरे को दोहराए, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। दादी दिन रात इसका निरीक्षण करती थी कि एक एक चीज जहाँ हो रही है कैसी बन रही है, एक एक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक हो गया, सब कुछ। तो जैसे ये ड्रीम प्रोजेक्ट है दादी का ओम शांति भवन, एक एक ईंट में दादी प्रकाशमणि की शुभ भावना समाई हुई है। और जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, रहने के लिए जगह नहीं थी, लोगों को कहाँ रुकाया गया था, इधर उधर ऑटो लो में, फिर भी बहुत खुश थे सब लोग। और पर इसमें और एक चीज़ हो गई थी बड़ी सूक्ष्म, वो कौन सी? कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत पावरफुल, बहुत सक्सेसफुल, पर कॉन्फ्रेंस में नाम किनका हो गया? जिन्होंने भाषण दिए थे, जो स्टेज पर थे, उनकी थोड़ी वाह वाह हो गई। और जिन्होंने दूसरी सेवाएं की, उनके मन में था कि थोड़ा सा उदासी हो गई कि हमारा नाम कम हुआ और इनका नाम ज़्यादा हो गया। फिर बाबा ने मुरली भी चलाई थी उसके ऊपर। चाहे सेवा साधारण हो, परंतु स्थिति बहुत श्रेष्ठ, स्थिति बहुत ऊंची होगी। कौन क्या सेवा कर रहा है उसका महत्व नहीं है, महत्व किसका है? स्थिति का महत्व है। तो इसी समय बाबा का एक संदेश आया था गुलजार दादी के द्वारा, और वो संदेश आज हम देखेंगे। उसमें क्या है, बहुत पावरफुल संदेश है। तो ये संदेश है 15 फरवरी का 83 विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले भाई बहनों के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। उसमें बाबा ने तीन प्रकार के बच्चे देखे। सबसे पहले बच्चे थे वो थे लिखने वाले, प्रेस वाले। 15 फरवरी 83 की ये मुरली। तो ये कॉन्फ्रेंस कब हुई होगी, लगभग इस बीच। और दीदी दादी दोनों थे, और दीदी कब गए, जुलाई में, ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद। तो बाबा ने यहाँ पर तीन प्रकार के बच्चे इमर्ज किए। पहले थे कलमधारी, अर्थात जिन्होंने लिटरेचर लिखा। उनके लिए क्या कहा बाबा ने, तुम कौन हो, जो कलमधारी है वो कौन है, प्रेस वाले, कमल समान। वो कौन है, कमल समान। उनको क्या करना है, सदा कमल समान सारे विश्व के तमोगुणी वाइब्रेशन से न्यारे और पिता परमात्मा के प्यारे बन, ऐसी स्थिति में रहकर सेवा करो। तो जो भी लिखते हो वो कैसे लिखना है, कमल आसन पर बैठकर लिखो। ये फर्स्ट पॉइंट है। लिखने का जो भी काम है, लिटरेचर का जो भी काम है, वो कैसे करना है, कमल आसन। और कमल आसन क्या करेगा, हमको इस संसार के तमोगुणी वाइब्रेशन से फ्री करेगा। ये फर्स्ट। और सेकंड जो थे वो वीआईपी बच्चे थे, उनको आगे आगे सीट दी गई थी। और बाबा क्या कह रहे हैं उनके लिए, सिंहासन पर नहीं बिठाया लेकिन हंस आसन दिया है, ये सोचकर बैठो। हंस आसन पर बैठने से अपनी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी और जो भी कार्य करोगे उसमें विशेषता होगी। ये सेकंड। और तीसरे बच्चे थे सरेंडर्ड, उनके लिए बाबा ने क्या कहा, उनके लिए एक अच्छा लाइट के फूलों का हार दिया, एक एक लाइट पर एक एक दिव्य गुण लिखा था। ये मेरे बच्चे सर्वगुण धारण करने वाले गुण मूर्त बच्चे, सभी बच्चों ने एक बल एक मत होकर जो यह बेहद की सेवा की है, उसके रिटर्न में बाप दादा यह दिव्य गुणों की माला बच्चों को दे रहे। और क्या कह रहे, सभी बच्चों को सदा बाप दादा के यही महावाक्य सुनाना कि सदा खुश रहना, खुश नसीब रहना और सर्व को खुशी के वरदानों से, खजानों से संपन्न बनाते रहना। तो जो संदेश आया उसमें ये तीन बातें थी। सबसे पहला लिखने वालों के लिए क्या कहा, जो कलमधारी है वो क्या बन जाए, कमल आसनधारी। कुछ भी लिखो उसको कैसे लिखो, न्यारी प्यारी अवस्था में लिखो। और लिखना केवल कागज पर लिखना नहीं है, हम अपने जीवन की कहानी रोज लिख रहे, उसमें भी कैसी अवस्था हो, डिटैच्ड। दादी के पास कितने लोग आए, बड़े बड़े वीआईपीज आए, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कॉन्फ्रेंस में कौन आए, जर्नलिस्ट आए, एडिटर्स आए, पेपर्स छापने वाले जो पब्लिशर्स थे, जो उनके मालिक थे, वो भी आए। लोगों ने पूछा दादी को, उस दिन भी सुनाया कि दादी बाकी कॉन्फ्रेंस में केवल पत्रकार आते हैं, इसमें इतने सारे लोग कैसे आ गए, आपने ऐसा क्या किया कि इतने लोग आ गए। दादी का क्या उत्तर था, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बाप का घर है, उनके बाप का घर है, वो अपने बाप के घर आए हैं, बस वो अपने घर आए हैं। सबको एक ही फीलिंग दी कि तुम कहाँ आए हो, किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हो, कहाँ आए हो, अपने पिता के घर आए हो, बस। जो बिछड़ गए थे वो वापस आ गए, ये एक बात। दूसरी एक बात, दादी को कहा गया, दादी इतने लगभग 3000 लोग आए, उसमें 1000 तो वीआईपी थे, एक वीआईपी की सेवा करना अर्थात परेशान, कितना उसके पीछे 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 पीछे, 500 की सेवा के बराबर है एक की सेवा करना अर्थात। दादी मुझसे पूछा करती थी जब मैं दादी को देखने जाता था, मैं कितने के बराबर हूँ तुम्हारे, कितने पेशेंट के बराबर हूँ। अच्छा आए हो, ऊपर से आए हो, कहते हाँ दादी, तो पेशेंट वहां के छोड़ के आए हो, हाँ, तो मैं कितने के बराबर हूँ, ऐसे पूछती थी। तो दादी को पूछा गया 1000 आपने इनको कैसे मैनेज किया, दादी का वही उत्तर था, दादी कुछ मैनेज नहीं कर रही, मैनेज करने वाला ऊपर बैठा है, मैं अपने आप को हेड समझती ही नहीं। हेड समझा मतलब दूसरों को कंट्रोल करना, हेड समझना मतलब तुम ये करो तुम वो नहीं करो, हेड समझना मतलब पूरा मॉनिटर करते बैठना हर एक को, एक्टिविटी को, गलतियां निकालना एक एक की। दादी ने कहा मैं हेड समझती ही नहीं, हेडेक ही खत्म। तो वो अपने बाप के घर आए, अपने आप उनकी सेवा हो रही है। इतना जबरदस्त जब निमित्त भाव होगा तो कितनी भी बड़ी सेवा हो अपने आप होगी। अगर निमित्त भाव नहीं होगा तो क्या होगा, मैं कर रहा हूं, टकराव होगा, मैं जैसा चाहता हूं जैसे मैंने प्लानिंग की थी वैसा ही होना चाहिए, जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई और बाबा ने संदेश में तीन प्रकार के बच्चे इमर्ज किए। पहले लिखने वाले, तो जब भी कुछ लिखो सबसे पहले कहां बैठ जाओ, कमलासन, और रोज लिखना है कुछ ना कुछ। ये एक दूसरा चैप्टर लेसन सीखना है, रोज एक लिखना है, रोज की मुरली लेना, कुछ ना कुछ लिखना उसमें से। जैसे आज सुबह की अव्यक्त वाणी, तो कमलेश भाई आज की मुरली से कम 21 टॉपिक निकालने हैं आपको, ठीक है। टॉपिक्स पावरफुल होने चाहिए, लिखने का काम दूसरों को दे देंगे ये आसान है पर टॉपिक निकालना, एकदम बुद्धि अलर्ट हो जाती। उधर मुरली सुन रहे और सुनते सुनते क्या करना है, केवल टॉपिक लिखना, केवल टॉपिक निकालना। केवल टॉपिक भी आ गया ना, तो सारे दिन भर उसको देखते ही एकदम बुद्धि चलने लगती है। वो सिर्फ एक पैराग्राफ में नहीं तो नींद आ जाती है। साक्षी की साधना, आज की मुरली से एक टॉपिक साक्षी भाव है कहीं ना कहीं, है ना कि नहीं है। साक्षी की साधना, साक्षी का अभ्यास, साक्षी कैसे बने, साक्षी दृष्टा कैसा होता है, ये टॉपिक्स है। साक्षी की नाव, स्मृति की पावर, स्मृति से क्या होता है, कौन कौन सी स्मृति दिलाई, 1, 2, 3, 4, 5 स्मृति क्या होती, स्मृति वृत्ति स्थिति कृति, ऐसे शब्द बनाओ राइमिंग वाले 10-15। उस दिन मुरली सुनाई थी एक, जलती आग में सलामत पुंगरे, उस मुरली में था। एक दूसरा वाक्य था पर उसमें से, तो रोज क्या करना है, हर मुरली से टॉपिक एक्सट्रैक्ट करने हैं। पॉइंट्स बहुत लिख लिए, पॉइंट्स लिखना बंद, अभी क्या करना है, टॉपिक्स लिखो। मुरली सुनते सुनते ही टॉपिक्स लिखना चालू, बस ओनली टॉपिक्स, टॉपिक्स लिख दिया जेब में रख दिया, दिन में निकालो फिर पढ़ो, अच्छा ये टॉपिक है क्या हो सकता। स्मृति, कौन कौन सी स्मृति दिलाई है बाबा ने, बुद्धि में चरण, तो सबसे पहला और किस स्थिति में बैठ के, जैसे मैं कमल आसन रखा हुआ है उस पे जाके बैठो और फिर चिंतन चालू करो और अपनी एक जगह फिक्स कर दो। जैसे ही वो जगह पे जाओगे लिखना चालू हो जाएगा, जैसे ही जगह पे जाओगे चिंतन चालू हो जाएगा। जैसे किसी स्थान पर जाते तो क्या होता है, वहां पर जाते ही वहां के वाइब्रेशन आने लगते। जैसे ही बाबा के कमरे में जाओ, वहां कोई बैठ के एक्सरसाइज करता है क्या, वहां की वो वाइब्रेशंस नहीं है। जिम में जाओ, वहां के जिम के वाइब्रेशंस, हर एक स्थान के अपने अपने वाइब्रेशंस होते। तो पहला, दूसरा काम बताया, दूसरा काम कौन सा, वीआईपी बच्चे कहां बैठे हैं, जब भी किसी सिंहासन पर बैठो क्या समझो, मैं कहां बैठा हूं, हंस आसन पर बैठा हूं। सारे दिन भर जब भी बैठो सोचो ये क्या है, हंस आसन। हंस आसन अर्थात डिटैच्ड, हंस आसन अर्थात निर्लिप्त, कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि विघ्न बढ़ते जाएंगे। कल की मुरली थी ना वरदान, विघ्न विनाशक, अचल रहना है तुम। और सबसे बड़े बड़े विघ्न कौन से आएंगे, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही सबसे बड़ा विघ्न, जिसका सेंसिटिव नेचर है उसको कौन सा विघ्न आएगा, टॉन्टिंग कॉमेंट्स का, जिसको निंदा से सबसे ज्यादा भय लगता है कि मेरी कोई निंदा नहीं करना चाहिए, बस उसको सबसे माया कौन सी आएगी, निंदा। बैठे बैठे जिसका ना जान ना पहचान और निंदा कर रहे, ना हमने कभी बात की उनसे, ना हम उनको जानते ना पहचानते और निंदा कर रहे, उसको उसी में सुख मिलता है। इसलिए इस समय में कहां बैठे रहना है, हंस आसन। तीसरा, सरेंडर्ड बच्चे से बाबा मुलाकात कर रहे, क्या कहा, खुश रहो और खुशी बांटो, खुश नसीब और खुशी देना है। सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुश रहना, बस खुद को खुश रखना है, दुनिया का जो होना है होने दो। पहला काम तो क्या है, खुश रहना, हम खुशी नहीं रहते तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, सदा खुश कैसे रहे। और जो भी टॉपिक होगा उसको पॉइंट्स में डिवाइड करना है, निबंध नहीं लिखना है। खुशी बहुत अच्छी चीज है, खुश रहना चाहिए, खुशी होने के लिए ऐसा करना वैसा करना, ऐसा नहीं। पॉइंट्स, 100 points टू बिकम हैप्पी, ऐसा। अब इसमें एक पॉइंट ना मिला दूसरे में, क्योंकि हम जब निबंध लिखते तो एक ही पॉइंट का लंबा 3 पेज का विस्तार कर देते, वो नहीं, विस्तार मन में करो लिखते समय, ओनली पॉइंट्स। जैसे खुश कैसे रहे, पहली बात किसी को गिफ्ट दे दो, गिविंग गिफ्ट्स। सेकंड, गीत गाओ। तीसरा, डांस करो। चौथा, वॉक करके आओ, पांचवा खेलकूद करो, छठवा जोक्स, ज्ञान युक्त जोक्स, संसार में जोक्स की भी भरमार है। उसके बाद में अगला ब्राह्मण परिवार से ज्ञान की चिटचट करो। अगला कुछ दे दो, कुछ दे दो जो कमरे में पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं है कुछ दो, देने में खुशी है। वो हर चीज करके देखो जो आज तक की नहीं, कमरे को साफ कर दो, खुशी होगी। छोटे बच्चे से मिलो, छोटे बच्चे से बात करो, छोटे बच्चे के साथ खेलो, सही है, बैठी है छोटी, अनुभव होगा। सेंस ऑफ वंडर नाम की किताब है, 70 साल की एक महिला होती है, वो एक छोटे 5 साल के बच्चे के साथ दोस्ती कर लेती, क्योंकि उसको लगता है जीवन मैंने जिया पर कुछ मिस हो गया। और वो जैसा बच्चा करेगा, 1 साल तक जैसा जैसा बच्चा करता है वैसे वैसे वो करती है। बच्चा भागता है वो भागती है, वो रेंगता है वो रेंगती, वो कहीं सूरज को देखने जाता है, जैसा जैसा वो करता है वैसे वैसे वो करती है, बिना सोचे बिना समझे, बस फॉलो करना है बच्चे को। वो लिखती है 1 साल के बाद, तो उसने ये किताब लिखी और उसने कहा मुझे बहुत आनंद हुआ, मेरा जो बचपन जो खो गया था वो वापस लौटा है। नहीं तो बड़े जो होते ना तर्क वितर्क करते हैं, तर्क तर्क, ईगो होता है उनमें, बच्चे निरागस होते हैं। जीसस क्राइस्ट से भी तो पूछा गया कि बताओ तुम्हारे स्वर्ग के राज्य में कौन आएगा, पूरी बड़ी सभा है, उस सभा में ज्ञानी मनीषी, वो फारसीज, वो पंडित लोग, विद्वान लोग, कहीं राजा दूर, सब खड़े हैं। वो पूछता है हम में से कौन आएगा तुम्हारे राज्य में। जीसस इधर उधर देखता है, इधर एक छोटी सी बच्ची खेल रही होती है, उसको पास जाता है, उसको अपनी गोदी में लेता है और कंधे पर लेता है, कहता है जो छोटे बच्चे जैसे है वो। उसका मतलब क्या था, चाइल्ड लाइक जो है, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड लाइक, इनोसेंट जो है, निरागस जो है, वो स्वर्ग के राज्य में आएंगे। तो वैसे छोटा बच्चा बनना, तो बच्चों के साथ खेलना, उसके बाद प्रकृति में जाना, ये सब क्या करेगा उधर भी एक छोटी तो कुछ भी करना पर जिससे हम खुश हो जाए। कुछ लिखो, कोई नई पॉइंट्स, कोई नई पॉइंट चिंतन करो तो खुशी आएगी। जैसे दादी का कैसे था, पौधा लगाओ, ब्लड डोनेशन करो, कितनी खुशी होती है। लोगों ने ब्लड डोनेशन ही नहीं किया है, 16-16 खून लेके घूमते हैं, हीमोग्लोबिन रोज हॉस्पिटल में कितने थ्रू ब्लड डोनेशन ट्रांसमिशन करना पड़ता है, खून लेके आते पेशेंट 2-4 रोज का है ये तो हॉस्पिटल। तो ब्लड डोनेशन करो, ट्री प्लांटेशन करो, सफाई करो, सफाई अभियान, कुछ भी करो, बट वो सारी चीज करो जो खुशी दे। नहीं तो ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान योग ज्ञान योग ज्ञान योग ज्ञान योग करते करते अंदर अंदर थोड़े दुखी हो जाते, वही 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 वही। कुछ तो नया करो, एक्सरसाइज करो, स्किपिंग करो, पुशअप करो, पुलअप करो, कुछ भी करो पर नया करो। पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, आर्ट करो, गीत गाओ, गीत लिखो, कविता लिखो, स्केटिंग करो, कुछ भी करो, साइट सीइंग, कुछ भी पर करो। लक्ष्य रखना है कि बी हैप्पी, खुश रहना है बस। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ज्ञान योग धारणा ये सब बहुत ज्यादा रहने की जरूरत नहीं होती है खुशी के लिए। जिन लोगों के पास ये बहुत कम है वो भी खुश है संसार में, ज्यादा ज्ञान थोड़ा ज्यादा दुखी कर देता है। इसलिए खुशी, और खुशी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विस्मय का भाव, वंडर, ये कभी खत्म ना हो, आश्चर्य हो, आश्चर्य नहीं, ये तो आश्चर्य थोड़ा निगेटिव होता है, वंडर विस्मय, ओह मुझे जानना है, मुझे समझना है ये सब क्या है, ये भाव। जैसे आज मुरली चलने वाली है, कौन सी मुरली है, 18 जनवरी की मुरली है, कब की मुरली है, 91 की। अब ये मुरली सुननी है तो उसी कालखंड में प्रवेश करो, टाइम ट्रैवल। सोचो ये मुरली कहाँ चली, कहाँ चली, ओम शांति भवन में। इमेजिन करो बाप दादा आए हुए, दादी बैठी, अभी दादी ध्यान में जा रही है, बाप दादा आ रहे और फिर मुरली चल रही है, मैं अकेला ही बैठा हूँ। एक बार ऐसे ही हो गया ना, हिस्ट्री हॉल में बाबा आए तो माताएं बैठी थी, तो भाइयों को लगा माताओं से मिल लो, तब तक हम खाना खा के आते हैं, माताएं बाबा से मिल रही, कितना मिलेंगे, और माताएं चली गई, बाबा बैठा है, कोई तो आए मेरे से मिले, हिस्ट्री हॉल में कोई तो आए मेरे से मिले, भाई चले गए खाना खाने, माताएं मिल के चली गई। बाबा इंतजार कर रहे हो, लच्छू दादी बुला रही। ये वो समय था, और फिर हमने वो समय देखा डायमंड हॉल में, केवल दूर से देखो, और अभी समय चल रहा है खाली वीडियो पर देखो, कैसे समय ने करवट बदली। तो टाइम ट्रेवल करना है हर मुरली सुनते समय, हर मुरली पढ़ते समय सोचना मैं वहां हूं। जितनी साकार मुरलियां चलती है, कहां चली साकार मुरलियां? हिस्ट्री हॉल। तो साकार मुरली कहां बैठ के सुननी है रोज की? हिस्ट्री हॉल में। बाबा आ रहे हैं उधर से, बैठे वहां चंद्रहास दादा बैठे, क्या करते हुए? टेप, ग्रामाफोन लेके। इधर बाबा आके बैठे, और बाबा क्लास चालू करने से पहले दृष्टि, और दृष्टि से पहले बात, फिर ऐसा करके पहले गीत, और फिर ये करके अब मतलब मुरली चालू होने वाली है। और जिन 18 जनवरी के दिन ऐसा किया ही नहीं, दृष्टि दिए और चले गए, सुबह क्लास हुई नहीं, सुबह पहली बार यज्ञ इतिहास में ये चेंज था। तो उस सीन को क्रिएट करना है, जैसे वो CID होते हैं, वो क्या करते हैं? क्राइम सीन को क्रिएट करते हैं, क्राइम सीन को क्रिएट करते हैं। वैसे मुरली सीन को क्रिएट करना है कि ये मुरली कहाँ चल रही है? हिस्ट्री हॉल। और हिस्ट्री हॉल में हर दिन अलग अलग जगह बैठो, एक दिन इधर से बैठना, एक दिन उधर से, एक दिन पीछे से, एक दिन नीचे, एक दिन एकदम सामने, और सुनो कौन सुना रहा है। ठीक है, तो ये तीन बातें इस मुरली में, इस संदेश में, और दो तीन बातें थी। ये तो लास्ट पार्ट था, शुरुआत। सदा की रीति प्रमाण आज जैसे ही वतन में पहुंची तो बाप दादा बहुत मीठी नजर से दृष्टि द्वारा सर्व बच्चों को याद प्यार दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से आज ऐसे अनुभव हो रहा था कि जैसे अति शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद की किरणें निकल रही है। कितना अच्छा अभ्यास है ये, रोज सुबह अमृत वेला बाबा के पास जाना और बाबा से मिलना। क्या लेना? दृष्टि से। दृष्टि से क्या लेंगे? किरणें। ये दृष्टि से ही भोजन मिलेगा, ये खा लो तो फिर कुछ खाने की जरूरत नहीं, शक्ति मिलेगी इससे, अगर मन इतना सूक्ष्म कर दो तो। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बहुत कुछ पा रहे हैं। बाप दादा सभी की याद लाई हो, मैंने कहा याद तो लाई हो, लेकिन याद के साथ आह्वान के संकल्प भी लाई हो। इस समय तो मेरे इतने प्यारे बच्चे जो भी आए हैं जानने के लिए आए, ऐसे भी दिन आएगा जो फिर मिलने के लिए आएंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों का दृश्य वतन में, ये दृश्य वतन में रहता है, सदा देखते रहते। जो भी सेवा केंद्र पर आ रहा है या मधुबन में आ रहा है, क्या सोचना है? ये अभी जानने के लिए आए हैं, बाद में मिलने के लिए आएंगे, यही समझो कि ये ब्राह्मण आत्मा है। ये समझो ही नहीं कि अज्ञानी है, अनजान है, कुछ है। क्या समझना है? ये होवनहार ब्राह्मण आत्मा है, जैसे बाबा की दृष्टि है। फिर एक दृश्य ही मर्ज हुआ, जैसे भारत देश में भक्ति में लोग शिवलिंग में क्या करते हैं, मंदिर में शिवलिंग, वैसे वतन में एक प्रतिमा दिखाई दी। वो कैसी थी? गोल आकार की थी। उस गोल आकार में अनेक चमकीले हीरे चारों तरफ नजर आए। कितने रंग के थे? पहला लाइट, दूसरा सफेद, हरा, हल्का ब्लू और गोल्ड। उसमें क्या लिखा था? सफेद लाइट के अक्षरों में लिखा था शांति, दूसरे में उमंग, उत्साह, सेवा। तो बाबा बोले सभी बच्चों ने बहुत ही उमंग, उत्साह और शांति के संकल्प द्वारा विश्व की सेवा की। कैसे कैसे विमर्श कर रहे हैं? एक गोला है, एक लाइट है, अलग अलग लाइट यहाँ घूम। वैसे हम भी अपना इमेजिन कर सकते, सारे दिन भर में मैं क्या हूँ? लाइट का शरीर है, और मुझसे क्या हो रहा है? लाइट की किरणें, शांति की, उमंग की, उत्साह की किरणें फैल रही है। और लास्ट एक बात और बहुत पावरफुल वाली है, बाबा ने कहा सागर के किनारे में आकर गागर भरकर नहीं जाना है, लेकिन मास्टर सागर बनकर जाना है। खान पर आकर दो मिट्टी भरकर नहीं जाना है, स्पिरिचुअल लालच, ग्रीड उत्पन्न करना है। कौन सा? और ज्यादा, और ज्यादा, जितना चाहे उतना ले लू, केवल एक छोटी मटकी भर के नहीं ले जाना है। कितना लेना है? यहां से खुद ही सागर बन जाओ इतना। तो ये जो पीरियड था, इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं छोटी छोटी, हम देखेंगे। मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, विदेश की सेवाओं का अपना एक अलग विस्तार है, भारत की सेवाओं का एक दूसरा विस्तार है। विंग्स और ये बहुत सारी, ग्लोबल हॉस्पिटल, विंग्स, उसके बाद में शांतिवन 96, ये ढेर सारी घटनाएं हैं। तो कैसे एक एक वर्ष, जैसे दादी को नई नई प्रेरणा आती थी, बाबा के कमरे में बैठी मतलब नई प्रेरणा आई। प्लेन बुद्धि होकर बैठना है, अपने आप बाबा ऊपर से टचिंग करेगा। ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, प्रश्न लेके नहीं बैठना है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे बैठना है, बस अब तुम बताओ। मन को इतना शांत कर दो, अचानक टचिंग आएगी, ये करो, और नई नई टचिंग्स आएगी बाबा से, तो वो करनी है। ठीक है, तो ये जो होम शांति भवन था, तब जो बना आज कितनी बड़ी सेवा कर रहा है, कितने ग्रुप्स आते हैं, कितनी भट्टियाँ, कितनी क्लासेस, और यहाँ के वाइब्रेशंस कितने पावरफुल हैं सुबह के। ओम शांति भवन में बैठकर मुरली सुनना और कहीं विश्व में सुनना, इसमें बहुत अंतर है। और ग्रुप बदलते रहता है, सभा चलायमान है, नए नए ग्रुप्स आते रहते विद नए नए वाइब्रेशंस। न हिंदू न मुस्लिम, तुम एक पिता की संतान हो। तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्मा रूप में भाई भाई, अविनाशी नाता जुटाकर प्रेम की धार बहाए। उमड़ चली शांति की सरिता, भूमंडल पर आज ओम शांति भवन में सजे शिव शांति के साज। ओम शांति।
चली शांति की सरिता, भूमंडल पर आज ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साज। उमड़ चली शांति की सरिता, भूमंडल पर आज विश्व शांति के साथ। ओम शांति भवन में शिव संदेश सुनाए, अंधकार में भटके मानव को शांति पथ दर्शाए। ओम शांति शांति। उमड़ चली शांति की सरिता, भूमंडल पर आज ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साज। शांति के साथ। ओम शांति भवन में शिव संदेश सुनाए, अंधकार भटके मानव को शांति पथ दर्शाए।
शांति के साथ।